أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 31 سے تفسیر دیکھتے ہیں. وقال الذين كفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ، یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم تو ہرگز اس قرآن پہ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، بهذا القرآن، اس قرآن پہ ہم نہیں اس قرآن کو ماننے والے، ولا، اور نہ، بالذی، اس کو، بین یتی، جو اس سے پہلے. کون سی ہے قرآن سے پہلے؟ تورات اور انجیل. یہ بات مکہ کے کافروں نے کیوں کہی؟ یہ مکی سورت ہے نا، تو اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے کہ مکہ میں کیا حالات تھے. اور ان لوگوں نے کہا، اصل میں یہ اہل کتاب کے پاس جایا کرتے تھے ان سے پوچھنے کے لیے مسئلے مسائل کہ تم بتاؤ. ان کے پاس خود کے پاس تو کوئی بک تھی نہیں اللہ کی طرف سے، نہ کوئی اتنے زمانے میں ان کے پاس تو کوئی رسول آیا نہیں تھا. تو اہل کتاب نے ان سے کہا کہ ہماری کتاب میں تو آخری جو نبی ہے اس کی صفات لکھی ہوئی ہیں، تو تم ہم سے وہ صفات ہی پوچھ لو بجائے روز روز آ کے کوئی کوسچن کرنے کے. تو جب مشرکین نے ان سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بالکل وہی تھیں جو اہل کتاب کی کتابوں میں، تورات میں بیان کی گئی تھیں. تب انہوں نے کہا کہ ہم تو نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہم ان کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات انجیل، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے، جب کسی نے ارادہ ہی کر لیا ہو کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے تو پھر کوئی اس کو منع نہیں سکتا. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں ماننا. یہ بڑی آگے کی جو آیات ہے نا، بڑی توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. قرآن کا انکار انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان آیات میں، کہ وہ کہنے لگے ہم نے نہیں ماننا. اور بہت فورسفلی انہوں نے کہا لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں مان کے دیں گے، ہم نے تو مان کے ہی نہیں دینا. اس کا مطلب ہے تم جو مرضی کر لو، ہم نہیں مانیں گے. تو کیا ہے اب ان کی اس بات کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا ایک منظر دکھاتے ہیں جس میں یہ انکار کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اور منظر بڑا عجیب ہے. کیا ہے منظر؟ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش تم دیکھتے ہیں اے نبی، کاش آپ دیکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کے لیے بھی یہ خطاب ہے کہ کاش تم سب دیکھ سکتے ہیں. کیا؟ اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ موقوفون، کھڑے ہوں گے وہ، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے. ابھی تو آج تو دنیا میں ہر ایک کو دیکھیں، بھانت بھانت کی بولیاں، ہر ایک کو آزادی ہے، جو مرضی بولے، جو مرضی کہے. کوئی کہتا میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، کوئی کہتا میں تو نہیں اس قرآن کو مانتا، کوئی کہتا یہ رسول کیسے، انہوں نے کیسی باتیں گی. ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان میں کئی مسلمان بھی ہیں، جس کے جو منہ میں آتا ہے نا وہ بولتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے انکار کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مان لیتا ہے، اپنی مرضیاں، یعنی اپنی مرضی کے مطابق بول رہے ہیں. لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اور تب ان کو کھڑا کیا جائے گا وہاں پہ، روک رکھے جائیں گے وہاں پہ. آج بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا. اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ رب کے سامنے کھڑے ہونا ایک تو معمولی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ رب جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات میں. کیا پڑھا تھا؟ کہ فرشتے جب اس کا حکم سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، کیسے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، کیسے سجدوں میں پڑ جاتے ہیں. اس رب کے سامنے حاضر ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، کہ کھڑا کر دیا جائے، کسی کو روک لیا جائے کہ بس یہاں پہ ویٹ. اب یہ کیا کریں گے؟ یرجعوا بعضهم الى بعض للقول، پھیریں گے ان میں سے بعض بعض کی طرف بات کو. بعض کی طرف بات پھیرنے کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے، دوسرا اس پہ ڈال رہا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ الزام لگانا نا، بلیم گیم. ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہوں گے. کیا بلیم کریں گے؟ اس کی آگے ڈیٹیل ہے. یقول الذین استضعفوا، कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर बना के रखे गए। कमज़ोर बना के कौन रखे जाते हैं मुआशरे में? वो जो आम अवामुन नास होती है, जो जिसको कहते हैं हम दरमियाने तबके के, निचले तबके के, जिनका बस काम ये होता है कि बड़े बड़े लोगों को फॉलो करना, वो जो कमज़ोर बना के रखे गए या जो फॉलोअर थे, कहेंगे किसको कहेंगे? लिल्लदीन अस्तकबरू, उन लोगों को कहेंगे जो उनके, जिन्होंने तकब्बुर किया। तकब्बुर करने वाले कौन होते हैं माशरे में? जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, एलीट होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसके दरमियान डायलॉग हो रहा है, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझ आएगी आप कहेंगे कौन ज़यीफ़ और कौन तकब्बुर वाले, पता नहीं कौन लोग हैं। जो भी बड़े थे, बड़े बने हुए थे, चाहे घरों के बड़े हों, घर की चार दीवारी में भी कोई बड़ा होता है और कोई कमज़ोर होता है, माशरे में भी कोई बड़े होते हैं और कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अब ये जो कमज़ोर बना के रखे गए, ये जो फॉलोअर्स थे, ये ज़ाहिर है फॉलो किसको करते हैं? कोई भी अपने से नीचे को तो नहीं फॉलो करता ना, अपने से बड़ों को फॉलो किया जाता है। अब बड़े चाहे वो इल्म में हों, चाहे माल में हों, चाहे एक हुकूमतों में बड़े हों, इकतदार में बड़े हों, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे आपके ख़ानदान में कोई बड़े हों, तो जो कुछ लोग होते हैं जो कमज़ोर रखे जाते हैं, जो नीचे होते हैं, जो दबके रहते हैं, वो हमेशा उनके ऊपर लोग कप टू करते हैं जो उनसे बड़े होते हैं। तो आज ये कमज़ोरों को भी देखें ज़ुबान लग गई, ये तो दुनिया में कुछ ना बोलते थे, तो ये अब वो बड़ों को कहेंगे लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम ना होते तो हम ईमान वाले होते। इसी बात से पता चलती है कि उनकी हसरत उस दिन कितनी होगी कि काश हम ईमान लेकर आते, काश हम मान गए होते। ईमान क्या है? मान जाना, ना सिर्फ दिल से मानना, जुबान से भी इकरार करना और आपके अमल में भी उस चीज़ का शो करना कि आप माने हुए हैं, ये ईमान है। वो कहेंगे हाय काश, हाय अगर तुम ना होते तो हम तो मान ही जाते। अब यहाँ पे ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना, इनमें सबसे पहले किसने बोला? जो कमज़ोर थे, काश तुम ना होते। यहाँ पे काश का भी माना हो सकता है, काश तुम ना होते तो हम होते ईमान वाले। दुनिया में तो शायद उन्होंने ईमान की कभी कदर भी ना की होगी, कभी ईमान वालों को कुछ अच्छा भी ना समझा होगा, कभी ईमान की उनको कोई वैल्यू भी ना पता चली होगी, लेकिन अब जब कयामत में जाएंगे ना, वहाँ पे अब आपने देखा कि असल वैल्यू किस चीज़ की है, किस चीज़ की वैल्यू है, क्या पता चल रहा है? ईमान की। अब नहीं किसी के बड़े होने से इम्प्रेस, अब नहीं किसी के माल और उससे इम्प्रेस, अब किस चीज़ से इम्प्रेस हैं? ईमान से। जब देखेंगे ईमान वालों का क्या उनके साथ सलूक है, तो कहेंगे हाय काश अब इनको पता चला यहाँ पे तो ईमान की बेसिस पे फैसला होना है। तो कहेंगे तुम ना होते तो हम मान ही जाते, हम ईमान वाले ही हो जाते। दुनिया में इनसे इतने इम्प्रेस थे या इतना उनका खौफ रखते थे इन बड़ों का। आप देखें जो भी बड़े होते हैं, घरों के हों, जो खानदानों के हों, सोसाइटी के हों, बरादरी के हों, उनसे लोग अमूमन खौफ खाते हैं, उनसे रोब में रहते हैं, उनको आइडियलाइज भी करते हैं क्योंकि वो बड़े जो हुए। मगर वहाँ पे देखें दुनिया में तो उनको आइडियलाइज करते रहे ना, उनसे इम्प्रेस होते रहे, हाँ वाह ये कितने बड़े लोग हैं, वाह इनके पास क्या कुछ है। अब कह रहे हैं काश ये होते ही ना। आप खुद सोच लें कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कुछ नहीं कहता कि हमें फॉलो करो या कुछ, लेकिन लोग इन बड़ों से इतने इम्प्रेस होते हैं कि आपने देखा होगा इनकी लाइफ हिस्ट्रीज जानना, इनके बारे में पढ़ना, इनके इंटरव्यूज़ पढ़ना कि इनकी पसंद नापसंद क्या है, फिर उसी तरह से लोग अपना लेते हैं। तो ये भी असल में फॉलो करते रहे ना इनको, अब इसी फॉलोइंग के चक्कर में ना बड़ों ने माना तो ना इन्होंने माना, अब जहाँ पे बड़े खड़े हुए हैं ये भी खड़े किए जाएंगे, अब भाग के कहीं नहीं जा सकते, इतने बेबस से खड़े किए जाएंगे वहाँ पे। अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे झंझोड़ा है ना, शऊरी तौर पे शऊर को, इंसान के कॉन्शियस को, फिजिकली नहीं लेकिन शऊरी तौर पे आपको वहाँ खड़ा कर दिया क़यामत के दिन हशर के मैदान में कि देखो फॉलोअर्स आज अपने बड़ों को क्या कह रहे हैं, ताकि आप भी देखें कि आप जिनको फॉलो करते हैं वो कैसे हैं। काश तुम देखते, देखो तो सही, इमेजिन तो करो, ये कैसे खड़े हैं और कैसे एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं। आज इनकी कमजोरियां भी दूर हो गई, दुनिया में तो ये बड़ों से दबते थे इनकी किसी भी वजह से, मगर आज तो किसी की बड़ाई रही नहीं, ना किसी के पास माल है, ना कुव्वत है, ना हुकूमत है, ना किसी के पास कोई रोब दबदबा है। आज तो सब कुछ खत्म हो गया, अब किस चीज से दबना। देखें, ये आप सोचा है आपने कि ये मुतकब्बिरीन को क्यों ये कहेंगे, क्यों ये बात वो अपने बड़ों को कहेंगे? इसलिए कि ये सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग हैं हमेशा यही हक के मुखालिफ रहे, हमेशा यही नबियों को अपोज करते रहेंगे, और ये चूंकि इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो आम आवाम भी इनके पीछे लग जाती है, इनसे इतनी इम्प्रेस हो जाती है, इनको फॉलो करने लग जाती है। ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, तो ये सोसाइटी में बिग नेम्स रखते हैं, तो लोग बड़ी जल्दी इनको फॉलो करने लगते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इतना आइडियलाइज करते हैं ऐसी बातों में भी, कि ये खाने को क्या पसंद करते हैं, फलां हीरो और फलां एक्ट्रेस, और पहनने को क्या पसंद करते हैं, और वही वो हम भी करें। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, जिनको भी बड़े समझा जाता है, ये तो आज इनको सितारे कहा जाता है ना, इसलिए मैंने इनकी बात की। जिनको सितारे कहा जाए तो खुद सोचें, सितारों को तो लोग फॉलो करते हैं, सितारों से डायरेक्शंस लेते थे पुराने ज़माने में, आज भी लेते हैं सितारों से, जब कंपस नहीं होते थे सितारों से डायरेक्शन ली जाती है। जिनको आप कहें ये सितारे हैं तो उनसे डायरेक्शन लेंगे तो फिर वो बताएं कि क्या हाल होगा, तो आज बड़े पशेमान होंगे, कहेंगे हम तो शायद दीन की तरफ आ ही जाते, हम तो शायद मान ही जाते अगर तुम ना होते, तुम्हारी वजह से हम नहीं ईमान लाए। अब समझ आ रही है ना कि हम क्या कर बैठे हैं, अब अपना अंजाम नजर आ रहा है। और आप नोट करें यहाँ पे, ये नहीं वो अभी कह रहे कि तुमने ना हमें रोका होता तो हम ईमान ले आते, बल्कि कहा है कि तुम ना होते इसलिए कि ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग बाज दफा तो रोकते हैं, बाज दफा उनको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ब खुद ही उनको पागलों की तरह फॉलो कर रहे होते, कॉपी कर रहे होते। आज भी देखें, लोग कोई आके तो नहीं कह रहा ना हमें फॉलो करो, लेकिन लोग क्यों अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। अब देखें उनका जवाब, अब वहां पे तो कोई भी चुप ना रहेगा, कोई अपने ऊपर थोड़े ही इल्जाम लेगा। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, अब ये कौन लोग हैं जो जो जालिम लोग हैं, जो कुरान को नहीं मानते थे, कुरान में बातें बनाते थे। अगर अहले मक्का के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुशरिकीन ने मक्का हो गए, लेकिन आज भी जो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम कुरान को नहीं मानते, हम इसके फलां हुक्मों को नहीं मानते, कुरान का एक हुक्म भी ना मानना पूरे कुरान का इनकार कर देना है। قال الذين استكبروا, कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकबर किया, अब ये इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात आ रही है, वो भी कुछ जवाब देंगे ना, वो कहेंगे للذين استضعفوا, उन लोगों से कहेंगे जो कमज़ोर बना के रखे गए, क्या जवाब देंगे? अब ये कमज़ोरों को, अपने फॉलोअर्स को, ये लीडर्स क्या जवाब दे रहे हैं अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को जो इनको कॉपी किया करते थे? अनहनु सददनाकुम, क्या हमने रोका था तुमको किस चीज़ से? अनिल हुदा, हिदायत से, बाद इस जाकुम, जबकि उसके बाद के वो तुम्हारे पास आ गई थी, क्या आ गई थी? हिदायत, जब तुम्हारे पास हिदायत आ गई थी तो भला हमने तुम्हें रोका था? हमने तुम्हें कहा था कि हिदायत ना लो? भला हमारा कोई जोर था? बल्कि कुन तुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे, तुम्हारी खुद ही ख्वाहिश थी, तुम्हारी खुद ही मर्जियां थी यही करने की, हमें क्या ब्लेम कर रहे हो? वो हम थे कोई? और कुछ हद तक तो उनकी बात सही है। इसको एक मिसाल से समझे, अगर हम आज अपनी मिसाल लें कि हमारे सरों पे आज किसी ने कोई बंदूक रखी हुई है कि ये खाओ, ये पहनो, ये कारोबार करो, ये कमाई के जरिए अख्तियार करो, ये लाइफस्टाइल अपनाओ, ये रहने सहने और खुशियों गमों के रंग ढंग ये अपनाओ, इस तरह से किया करो, अपनी शादियां ऐसे करो, अपने गम ऐसे करो, अपनी पहनना ऐसे करो, अपने तौर तरीके ये अपनाओ, क्या किसी ने इस तरह से कहा है? गोली मार देंगे अगर ये नहीं किया तो। हम आज कहते तो हैं कि मीडिया ने बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये फिल्मों ड्रामों ने बहुत लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है, ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है कि उनका हाथ है इसमें, मगर अल्टीमेटली अमल करते वक्त मीडिया तो नहीं कह रहा कि अंधे हो जाओ और हमें फॉलो करो। अल्टीमेटली तो रिसाले, फिल्में, ड्रामे, एक्टर एक्ट्रेसेस तो नहीं कह रहे कि हमें कॉपी करो, ये तो इसके बाद हमारी चॉइस बन जाती है, या हमें जो अच्छे लगते हैं हम उनको कॉपी कर रहे हैं, ये तो हमारी चॉइस है। तो ना ही कोई गैर मुस्लिम हमें कहता है कि मेरे जैसे रंग ढंग अपनाओ, हम खुद ही फिसलते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह वो कहेंगे, भला हमने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था, जब तुम्हारे पास हिदायत आ गई थी मान लेते, वहां तो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इवन ने देखे ना, आज तो दोस्त दोस्तों की पक्की सहेलियां बनी हुई हैं, एक दूसरे को कॉपी करती हैं, एक दूसरे के दीन पे चलती हैं, अगर दोस्त ने अप्रूव कर दिया तो करूंगी, अगर दोस्त नहीं मानेगी तो मैं नहीं करूंगी, दोस्त जैसा पहनेगी मैं वैसा पहनूंगी, जो दोस्त ने अगर मेरे पहनावे को और मेरी एक्टिविटीज को अप्रूव किया तो करूंगी, वरना ना किया वो नाराज हुई तो फिर नहीं करूंगी। तो दोस्त भी दोस्त को उस दिन कहेंगे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरी ये मुझे यहां तक पहुंचाया, तू ना होती मेरी दोस्त हो मैं तो सीधे रास्ते पर चली पड़ती। तो लेकिन तो दोस्त भी कोई मानेंगे, वो कहेगी तुम ना मुझे दोस्त बनाती, तू ना मेरी बातों पे चलती। तो जैसे दुनिया में कोई किसी का जुर्म अपने सर पे नहीं ना लेता, आप किसी को दुनिया में भी कह के देखें कोई भी नहीं अपने सर पे लेगा, मजाल है कोई मान ले कि हाँ मेरी भी कोई गलती है। अरे कहता है लो ना करती तू, ना आती मेरे झांसे में, ना आती मेरी बातों में। इसी तरह वहां पे वो कहेंगे तो ना ना हमने तुम्हें रोका था, हमने कब तुम्हें कहा था। अब ये वो लोग सोच लें जो दूसरों का नाम लेके हिदायत से दूर हो जाते हैं, तो जिनकी वजह से भी वो हिदायत से दूर होते हैं, तो वो कयामत के दिन कहेंगे, चाहे वो शौहर हों, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो आपके कोई ख़ानदान के बड़े हों, चाहे वो माशरे के कोई बड़े हों, उस दिन उन्होंने बरी ज़िमान होना, उन्होंने कहा ना हमने को रोका था तुम्हें, तुम्हें कुरान पढ़ती थी, तुम क्लासें लेती थी, हमें हमने थोड़ी ली थी, हमें थोड़ी पता था, हमने कोई कहा था तुम्हें, ना मानती तुम्हें भी अक्ल थी ना मानती। इवन शैतान कहेगा कि मैंने क्या किया है, मेरा कौन सा कोई जोर था तुम पे, खुद ही तुम मेरे रास्ते पर चले, तो तुम्हारे पास तो हिदायत आ गई थी, अब आपके पास पैगाम आ गया है, अब फिर भी अगर आप इस पैगाम को छोड़ के, इस हिदायत को छोड़ के भाग भाग के जाते हैं औरों को कॉपी करने के लिए, या भाग भाग के जाते हैं कि फलाने ने मना कर दिया, फलाने ने ये कह दिया इसलिए नहीं मैं ये कर सकती, तो ये देख लें कि वो जो भी फलां फलाएं जिसको भी आप बड़ा समझते हैं, कयामत के दिन वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैंने तो नहीं भाई तुम्हें रोका था, तुम्हारे पास हिदायत आ गई थी तुम कर लेती, तुम खुद ही मुजरिम थी, तुम्हारा अपना ही दिल नहीं चाहता था, तुम्हारे अपने अंदर ही खोट था, आज तो बहुत आराम से हम नाम लगा देते ना, उस दिन ये नहीं होगा कि उनको धर लिया जाएगा और हम कहेंगे हम तो बड़े मासूम थे, हमें क्या पता इन्होंने ही हमें कहा था, हम तो इनके प्रेशर में आ गए, हम तो इनकी बातों में आ गए। नहीं, वो आपका जुर्म अपने सर नहीं लेने वाले, वहां पे तो किसी ने भी नहीं किसी का लेना, कोई कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, किसी के कहने में आके हिदायत को नहीं छोड़ देना। यहां से आप अपने लिए जिंदगी में अपने लिए बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं कि जिंदगी में मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे हम इस चीज का ख्याल रखते हैं ना, हम कहते हैं आप कह रही हैं सर्दी में कोट ना पहनूं, अब आपके कहने पे मैं कोट ना पहनूं तो बाद में बीमार तो मैं ही होंगी ना, मुझे ही भुगतना पड़ेगा, कहती मैं तो कोट पहन के जाऊंगी। अच्छा फिर आपकी दोस्त आपको या कोई भी आपको कोई कहे ये गंदा मंदा गला सड़ा खाना खा लो, तो आप कहती हैं लो अब तुम्हारे कहने पर मैं खा लूँ, बाद में पेट तो मेरा ही खराब होगा ना, सहना तो मुझे ही पड़ेगा, लिहाजा मैं नहीं ये कर सकती। कितने सियाने हैं ना हम इन मामलात में, दुनिया के मामलों में देखो कितने सियाने, कभी भी नहीं गलत बात किसी का एक्सेप्ट करेंगे जिससे हमें लगे कि हमारा नुकसान होना है। आखिरत के बारे में इतने मासूम क्यों हो जाते हैं, आखिरत के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम लोगों की बात पे कहें, जब लोग हमें प्रेशराइज करें तो हम कहें कि लो तुम्हारे कहने पर यह कर लूँ, आगे जाकर भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना, मैं कैसे अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे इसका हिसाब दूंगी, ये क्यों नहीं कहते? कभी कहा ये? मैं आखरत के मामले में फौरन बिल्कुल दब जाते हैं, बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। ये कोई बात नहीं, ये कह रही है तो अब क्या करें, हाँ फिर बड़ा मजबूरी है। आपको कोई कह दे कि कोट के बगैर, स्वेटर के बगैर, सर्दी में -10 डिग्रीज में बाहर खड़े हो जा, कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन आखरत के मामले में कितनी जल्दी मान जाते हैं, मजबूरी है। दुनिया के मामले में चाहे हस्बैंड कहें, चाहे घर वाले कहें, चाहे बच्चे कहें, चाहे कोई भी कह दे, लेकिन आखरत के मामले में ये क्यों हम कह देते हैं? बच्चे कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं, फलां कहता है, फलां कहता है, फलां कहता है, उनको जवाब क्यों नहीं देते कि आज आपके कहने पे कर लेंगे, आगे जाके तो मुझे ही सहना पड़ेगा, मैं ही भुगतूंगी, तो कैसे मान लूं फिर आपकी? बड़ी स्ट्रॉन्ग मंजर कशी है यहां पे हशर की। अब वकाल लजीना स्तुदेफू, अब ये जो कमजोर हैं वो ये सुन के वो भी कुछ जवाब तो देंगे ना। वो कहेंगे लिल्लदीन अस्तकबरू, उनसे कहेंगे जिन्होंने तकबर किया, बल मकरुल लैली वन्नहारी, बल्कि तुम्हारा मकर था, तुम्हारी चाल थी रात की और दिन की, जब तुम हमें हुक्म दिया करते थे, अन्नकफुर बिल्ला, कि हम अल्लाह की ना माने, हम कुफर करें अल्लाह के साथ। कुफर करना क्या होता है? इनकार करना, अल्लाह का इनकार करें। वना जाला लहू अंदादा, और उसके साथ हम बना ले शरीक। तुम ही हमें कहा करते थे अल्लाह की ना मानो, अल्लाह को ना मानो, उस शिर्क करने का, ये पट्टियां तुम ही हमें पढ़ाते थे, दिन रात तुम्हारा यही काम था। क्या मतलब है ये दिन रात के मकर करने का? यानी तुम्हारा तो सारे दिन रात तुम्हारा काम ही, दिन रात का मतलब ये, जैसे हम कहते हैं ना, दिन रात तुम तो यही करते रहते, यानी तुम्हारा काम ही ये था कि हमारे लिए खुफिया तदबीरें करते रहते थे, किस तरह हमें बहकाओ, किस तरह हमें रास्ते से हटाओ, और तुम्हारे हुक्म की वजह से हमने ये काम किया। हम तो तुम्हारी वजह से हक से हट गए, हमने तुम्हारी वजह से शिर्क किया। आप देख लें कि अजाब देख के और ये चीज़ें देख के, ये सामने हशर की सख्ती देख के, अब कैसे सारी वफादारियां बदल जाती हैं लोगों की, कैसे लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वही जो दूसरे को फॉलो करने वाले थे और आइडियलाइज करने वाले थे किसी को, आज देखें वो किस तरह अपने ही बड़ों को क्या कह रहे हैं। तो देख लें फिर, अब वहां पे जब ये खड़े किए जाएंगे, देखिए ना अब कोई वापसी का रास्ता है, ना कोई अमल की जगह है, अब तो जो कर चुके वो कर चुके, दुनिया में करके आ गए। अभी भी अगर हम ये आयात सुन के इनसे सबक ना सीखें, तो बताएं कि फिर कहाँ, कौन सी चीज़ हमें बताएगी कि अल्लाह ताला ने एक फ्यूचर ला के, हमें फ्यूचर जानने का बड़ा शौक होता है ना, फ्यूचर में क्या होना है, तो फ्यूचर के कई सीन्स अल्लाह ताला ने हमें कुरान में दिखा दिया। आप ज़रा आज सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी का, ये हमारी ही नहीं, किसी भी सोसाइटी का एनालिसिस करें, उसमें कुछ लोग होते हैं वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एलीट्स होते हैं, मुस्तकबिरीन को जिनको क्लास में से कह सकते हैं, वो चंद एक होते हैं, बाकी तो सारे फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स की रेशियो 65-70% तो फॉलोअर्स ही होते हैं, जो ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं सोचना होता। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रा देख के, सोच के, देखभाल के पढ़ते हैं, वो भी 5-6% होते हैं, यानी ऊपर ऊपर दो चार लीडर होते हैं, एलीट क्लास होती है, और बाकी सारी आबादी फॉलोअर्स होती है, ब्लाइंड फॉलोअर्स। अजीब नहीं लगता आपको? अल्लाह ने अकल दी, सब कुछ समझ दी, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, बस ब्लाइंड फॉलोइंग करते जाना। जिसको आम जुबान में हम कहते हैं ना, उर्दू में आपने सुना होगा भेड़ चाल, क्या होता है भेड़ चाल में, क्यों ये लफ्ज़ रखा गया भेड़ चाल? बड़ा मज़ेदार है कि भेड़ों की आदत होती है, एक भेड़ जिधर को जाने लगती है, चाहे वो ऊंची जगह से छलांग लगा दे, उसकी हड्डियां टूट जाएं, पीछे वाली भेड़ें यही समझती हैं कुछ तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से इसने छलांग लगाई है, हम भी बस इसके पीछे कूद जाएं। तो ये सारी भेड़ें उसके पीछे कूद जाती, ये तो भेड़ें हैं ना, उनको तो अक्ल नहीं है, हम तो इंसान हैं, इंसानों के भी हम भेड़ों वाला काम करें, कि जिधर कोई एक जा रहा है वो तो अंधा हुआ पड़ा है, जो एलीट क्लास है, जो बड़ी क्लास है, वो तो अंधी हुई पड़ी है, हम भी अंधा धुन के पीछे जा रहे हैं। एक मिसाल से समझे, आपने कभी सोचा ये कैसे होता है कि अचानक ड्रेसेस का स्टाइल बदल जाता है? जब ये बदला हुआ स्टाइल आता है, शुरू शुरू में लोगों को बड़ा अजीब लगता है, उसके बाद सारे अंधाधुंध फॉलोइंग, एक रेस लग जाती है, सबका गोल ये होता है कि हमने यही करना है। अब जो ट्रेंड सेटर्स क्या चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपका सीना नंगा हो जाए तो आप सीना नंगा करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपका दुपट्टा गायब हो जाए तो आप दुपट्टा गायब करने में बहुत प्राउड होते हैं, अगर वो चाहते हैं आपके बाजू हों ही नहीं, स्लीवलेस हो, स्लीवलेस पहन लेंगे, वो चाहेंगे पिंडलियां आपकी खुलवा दें, खुलवा लेंगे वो आराम से, वो चाहें आपकी कमर के ऊपर उस जगह पे बड़ा सा होल कर दें शर्ट में, वो बड़ा होल बन जाएगा। कितनी भीड़ चाल है, ये सोसाइटी के बड़े बड़े लोग करते हैं ना, उनकी पसंद नापसंद होती है, जो हम अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल बना लेते हैं कि मैंने भी यही करना है। सोच खुद सोचे ना, हमारी सोसाइटी में जो नंगापन आया कुछ अरसे में, वो किस वजह से आया? यही इन मुस्तकबरीन की वजह से ना, उनमें पहले चेंज आता है, बड़ों में, लोग उन या मुतरफीन जिनको कह सकते हैं, खुशहाल लोग, लोग हर चीज़ में उनको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं चलो ये तो इतने बड़े बड़े हैं, अगर हम बड़े नहीं तो चलो इनको कॉपी करके ही पता नहीं हमने बड़े बन जाना। इंशाल्लाह ताला हम अगली सूरह पढ़ेंगे ना, सूरह फातिर, इसके दूसरे रुकू में हमें अच्छी तरह बात समझ आएगी कि बुरे बुरे काम को इंसान कैसे पसंद करने लगते हैं और उनको वो अच्छे लगने लगते हैं, वो जिनसे नफरत करनी चाहिए उसको अपना लेते हैं। तो यार यहाँ पे सिर्फ एक मैंने ड्रेस की मिसाल दी, हालांकि आपके पास अनगिनत मिसालें, आप अपनी इर्द गिर्द देखें जहाँ पे ब्लाइंड फॉलोइंग हो रही है, इवन यहाँ तक कि ये तो एक वो बात है, कहीं से भी देख लेंगे कि मसलन किसी रूम में देख लेंगे बहुत सारे लोग हैं, कहेंगे अच्छा पता नहीं इस रूम में क्या है, इसी में ही हम जाके पढ़ें, वहाँ पे चाहे वो कुछ भी बता रहे हो, ये नहीं देखना कि हक क्या है, बस ब्लाइंड फॉलोइंग। तो बात ये है कि इन आयात में जो असल बात है वो यही है कि दुनिया में इंसान अपना दिल दिमाग बंद करके नहीं जी सकता, कि जो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना शुरू कर दे, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे उनके पास कितना ही माल हो, कितनी शोहरत हो, कितना फेम है, बहुत कुछ है, कितना आप सोचते हैं कि ये बड़े आलिम है, ये फलां, ब्लाइंडली नहीं किसी को फॉलो करना, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अब वो कहेंगे यहाँ पे आके, जब यहाँ पे खड़े होंगे, अब तो कर रहा है जो, अब क्या होगा जब वो ना क्राइंग ऑन स्पिल्ड मिल्क, कि अब क्या करना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत वाली बात है, वसरु नदामता, और वो छुपाएंगे निदामत को, वो छुपाएंगे अपनी शर्मिंदगी को। अब जुबान से तो बड़े बेचारे दलेर बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल में हाल ये है कि अपनी शर्मिंदगियां छुपा रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये हो क्या गया, ये कब छुपाएंगे, लम्मा रावुल अजाब, जब वो देख लेंगे अजाब, अजाब को देख के मुजरिमों की अजीब हालत होगी, अब तो परेशान होंगे, अब तो पता है कि सामने क्या आ रहा है, अब सब याद आ गया, कहाँ कहाँ कुफर किया, कहाँ कहाँ शिर्क किया, कहाँ कहाँ अल्लाह की इताअत नहीं की, कहाँ कहाँ ज़्यादतियाँ की, किस कहाँ दुनिया में सिर्फ दुनिया ही के पीछे भागते रहे, तो उस दिन बहुत पछताएंगे। अब सोचें ज़रा, सर उन नदामत, वो तो छुपाएंगे ना शर्मिंदगी को, मगर वो रब के जिससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, उसने खोल दिया उस कुरआन में, वो छुपा रहे हैं, रब के लिए छुपा हुआ नहीं है, अब अंदर ही अंदर कितना पछता रहे हैं वो, शर्म के मारे अब चाहेंगे कि किसी को पता भी ना चले कि हम शर्मिंदा हो रहे हैं, जैसे सूरह आराफ की आयत 38 पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा दाखिल हो जाओ आग में जिन्नों और इंसानों के उन ग्रोहों के साथ जो तुमसे पहले गुजर चुके, जब भी कोई ग्रोह दाखिल होगा वो अपने साथी ग्रोह पर लानत करेगा, यहाँ तक कि वो सब इसमें जमा हो जाएंगे, तो इनके पिछले इनके पहलों के बारे में कहेंगे, ऐ हमारे रब यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, तूने आग का दोहरा अजाब दे, अल्लाह फरमाएगा हर एक के लिए दोहरा है लेकिन लोग नहीं जानते। तो यहाँ पे क्या है, जब वो अजाब को देखेंगे बड़े पशेमान होंगे, सारी इल्ज़ाम तराशियां तो रह ही जाएंगी, एक वक्त तक ही बातचीत हो सकेगी ना, उसके बाद अजाब को देख लिया अब पशेमानी। और अजाब क्या होगा वो क्या देखेंगे, वजअलनल अगलाल फी आनाकिल्लदीन कफरू, और हम डाल देंगे तौक उनकी गर्दनों में जिन्होंने कुफर किया। दुनिया में भी ये जो लोग तकब्बुर करते हैं, दुनिया में भी जिनकी गर्दनें अकड़ी रहती हैं, तो वो सजाएं कयामत की भी जो है ना, वो जैसे जुर्म होंगे उनसे काफ़ी सिमिलर नज़र आएंगी आपको। तो यहाँ पे दुनिया में अकड़े रहे, दुनिया में बात नहीं मानी, दुनिया में अपनी मर्जी और अपनी बात को ऊंचा समझा, तो आज देखो कयामत के दिन गर्दनों में इनके तौक वो होते हैं, जैसे आप नेक कॉलर पहनते हैं ना, बीमारों को देखा जिनकी गर्दन में कोई मसला हो तो वो नेक कॉलर पहनते हैं, इस तरह से तौक, लोहे के तौक पहले ज़माने में कैदियों को पहनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पे आग का तो अजाब है ही है, इसके अलावा वहाँ पे ऐसी जंजीरें, ऐसे तौक, ऐसी बेड़ियाँ, बेड़ियाँ होती ना जो पाँव में पहनते हैं, कभी आपने देखा होगा ये जो मुजरिम लोग, कभी टीवी वगैरह पे देखा होगा, ऐसे तो नहीं देखा होगा लेकिन पहले ज़मानों में वो भारी भारी जो बेड़ियां हैं वो पैरों में भी पहना दी जाती थी कि भाग नहीं सके। तो इस तरह की, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, तो इस तरह की उनके गर्दनों में तौक पहना दिए जाएंगे, यानी ऐसा आग का अजाब तो है ही, उसके अलावा जैसे मुजरिमों के लिए दुनिया में उनको बांधा जाता है, जकड़ा जाता है, इस तरह से उनको जकड़ा जाएगा। जैसे सूरह हाक्का में भी अल्लाह ताला ने फरमाया 70 हाथ लंबी जंजीरों में इसको बांध दो सिलसिला, तो वहाँ पे रुसवाई भी कितनी है जब जंजीरों में बांध बांध के घसीटा जाएगा, जब तौक पहनाए जाएंगे। और ये कौन लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी इनमें शामिल हैं, कि बड़े बड़े लोग जो दुनिया में कितने बड़े थे, इतने बड़े थे कि लोग उनको फॉलो करने में फ़ख्र समझते थे, लोग उनको आइडियलाइज किया करते थे, यानी दुनिया में तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ देखी भी ना होगी, बड़े बड़े लोग थे वो, बिग नेम्स थे जिनको हम बिग कहते हैं, बिग शॉट, इन्फ्लुएंशियल लोग, मादी तौर पे बहुत स्ट्रांग, उनका ये हाल हो रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जुल्म नहीं है, हल युजज़ाउना इल्ला मा कानू यामलून, नहीं वो जजा दिए जा रहे मगर जो थे वो करते। अब आप देख लें कि इनको वही सजा मिल रही है ना जो वो अमल करते थे, जो उन्होंने किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या अमल की जजा नहीं होनी चाहिए, जो किया उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो हर एक को अपने अमल का ही बदला मिलेगा। तो ये कहा जाता है कि काफिरों को, इनको ऐसी जंजीरों से बांधा जाएगा, अगर चेन्स का हम माना लें, ऐसी जंजीरों से बांधा जाएगा जो फी आनाक, जो इनकी गर्दनों में होंगी, यानी जंजीरों से हाथों को बांध के गर्दन से बांध दिया जाएगा। जब आप इमेजिन करेंगे क्या हाल है, ये भी जहन्नुम के सख्त तरीन अजाबों में से है। इब्ने अबी हातिम में हसन से रिवायत किया है कि जहन्नुम में कोई घर नहीं होगा, जहन्नुम तो एक ओपन जगह है जहाँ पर सारे लोगों को भेजा जाएगा, जहाँ पर जंजीरें होंगी, कैद होगी, बेड़ियाँ होंगी, और यही जंजीरें इनकी गर्दनों में पहनाई जाएंगी, फिर वो तंग जगहों में दाखिल कर दिए जाएंगे, और उनको कहा जाएगा हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, क्या वही सज़ा नहीं मिल रही जो अमल किए थे। अब इसके बाद इंसान को कितना इससे सबक लेना चाहिए, अल्लाह ताला ने वहाँ पे नाइंसाफ़ी नहीं करनी, हर एक को अपने अमल के अंजाम को देखना पड़ेगा, अंजाम देखें, अमल का अंजाम ऐसे ही है जैसे तस्वीर का एक रुख और उसके दूसरा रुख। तस्वीर में आप देखते हैं अगर आज आप रंग भर रहे हैं उसमें, ब्लैक कलर कर रहे हैं, तो तस्वीर को उलट के देखें, पीछे आपको काला ही रंग नज़र आएगा, सफ़ेद तो नहीं आ सकता ना। तो जो आज करोगे, जो आज रंग भरोगे जिंदगी में, वही कल पाओगे। फिर हमें ये क्यों बात भूल जाती है कि मैं जो यहाँ कर रही हूँ सिर्फ इसी का फल मिलेगा। आज अगर मुश्किल उठा के मुझे कोई नेकी भी करनी पड़े, तो इस तसल्ली से और इस यकीन से क्यों नहीं करती कि इसका बदला मुझे ज़रूर मिल जाना, कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह ये पता चला ना कि कुरान का इनकार मामूली बात नहीं है, अल्लाह के हुक्मों का इनकार जो करता है वो ये समझता है कि मैं बड़ी आफियत में हूँ, जो मर्जी बोलूँ, लो मेरे ऊपर तो कोई आसमान नहीं टूट के गिर रहा, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो इतने ऐसा बोला और ये कहा, क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने पर्दाए गैब के पीछे दिखा दिया कि देखो फिर तुम्हारे लिए क्या छुपा हुआ है, देखो तो सही क्या बीतने वाली है तुम्हारे साथ, सोचो फिर कि रब का सामना कैसे करोगे, कैसे जंजीरें और तौक डाल दिए जाएंगे, कोई तुम्हारा मददगार ना होगा, जिन बड़ों के पीछे तुम आज भाग रहे हो कल वही तुम्हें ये जवाब देंगे, आज खुद फैसला कर लो इनके पीछे जाना है या अल्लाह के रसूल की माननी है। सिर्फ उनकी दुनियावी बरतरी को देख के, सिर्फ उनकी दुनिया में जिसको कहते हैं लशक बशक को देख के, जो भी उनकी चकाचौंध है उसको देख के मुतासिर ना हो जाओ। और ये लोग फिर किस वजह से इस अमल को, इस अंजाम को पहुंचते हैं, अल्लाह ताला ने बस्तियों का एक अमूमी, अब वहाँ से जो सीन था उससे बाहर आ जाए, अल्लाह ताला ने एक अमूमी कायदा बताया हिस्ट्री में क्या होता रहा है। वमा अरसलना फ़ी क़रियतिम मिन नदीर, नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में किसी डराने वाले को, मगर क्या हुआ उसके खुशहाल लोगों ने कहा, इन्ना बिमा उरसिल तुम भी काफिरून, बेशक उसके साथ जो तुम दे के भेजे गए हो ना उसके साथ हम तो इनकारी हैं, हम तो इनकार करते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी दुनिया की तारीख में वमा अरसलना फी करियतिन, करिया का मतलब नकेरा है ना, यानी एक कोई स्पेसिफिक बस्ती नहीं, कॉमन नाउन है ये, कोई भी बस्ती उठा के देख ले कि जिसमें अल्लाह ने कोई डराने वाला भेजा है, हर बस्ती के जो अमीर लोग थे, खुशहाल लोग थे, प्रॉस्परस लोग थे, उन्होंने क्या कहा, हम नहीं मानते। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी जगह पे ऐसा नहीं हुआ, देखें आप कितनी ये बड़ी बात है ना, कि किसी जगह पे ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई रसूल किसी बस्ती में आया और उन्होंने कहा हो कि वेलकम वेलकम लबैक, हम तो हाजिर हैं और हम मान गए, जो आप लेकर आए हमने उसको मान लिया, कभी नहीं ऐसा हुआ। अब और किसने इनकार किया, उसके रईसों ने, उसके अमीरों ने, उसके सरदारों ने कुफर का ऐलान किया। इसके इस आयत के बारे में एक रिवायत आती है इब्ने अबी हातिम में, कि अबू रजीन फरमाते हैं दो शख्स आपस में शरीक थे, एक तो समुंदर पार चला गया, एक वहीं रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो उसने अपने साथी से लिख के पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, कैसे हैं, मतलब वो, उसने जवाब में लिखा कि गिरे पड़े लोग ही इनकी बात मान रहे हैं, कुरैश जो मतलब बड़े बड़े सरदार हैं उन्होंने उसकी इताअत नहीं की। अब आप देख लें कि कौन लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे, सबसे पहले जो बिल्कुल सोसाइटी के यानी पिसे हुए लोग, गुलाम लोग और बहुत ही कमज़ोर जो लोग थे सोसाइटी के समझे जाते वो, और जो बड़े बड़े लोग थे, एलीट थे, मुतरफीन थे, वो नहीं मान रहे थे। इस खत को पढ़ के वो अपनी तिजारत छोड़ के सफ़र करके अपने शरीक के पास पहुंचा, अपने पार्टनर के पास पहुंचा, ये पढ़ा लिखा आदमी था, किताबों का इसको इल्म था, इससे पूछा कि बताओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, उसने बता दिया, वो मालूम करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे पूछा कि आप लोगों को किस बात की तरफ बुलाते हैं, आपने इस्लाम के अरकान उसके सामने बयान किए, वो उसे सुनते ही ईमान ले आया, आपने फरमाया तुमने इसकी तस्दीक कैसे की, उसने कहा इस बात से कि सारे अंबिया, जितने भी अंबिया हैं उनकी यानी उनके जेन्युइन होने का कैसे पता चलेगा कि ये वाकई नबी हैं, कि उनके जो मानने वाले हैं हमेशा ज़यीफ़ मिस्कीन लोग ही होते हैं, जो सबसे पहले मानते हैं ना वो हमेशा कमज़ोर लोग होते हैं, इस पे ही आयतें उतरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आदमी भेज के उनसे कहलवाया कि तुम्हारी बात की सच्चाई अल्लाह ने नाजिल फरमा दी है, ये वाकई तारीख गवाह है कि दुनिया में असल कुर्बानियां उन्होंने नहीं की जिनके पास बहुत कुछ था। हालांकि होना तो यही चाहिए था ना, जिसको जिन अल्लाह ने इतना दिया हुआ उसको तो आगे बढ़ के बल्कि कुर्बानी भी देनी चाहिए, उसको आगे बढ़ के मानना भी चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह का कितना एहसान है। मगर कुर्बानियां या दीन को जो शुरू शुरू के दिन बड़े हार्ड होते हैं ना, वो उन दिनों में ईमान को थामना बड़ा मुश्किल होता है। ये उन लोगों ने हमेशा किया हिस्ट्री में जो गरीब थे, जिनमें दुनिया की मोहब्बत कम थी। आज भी देख लें जो मुतरफीन है कम ही मानते हैं। आज आप मस्जिदों में देख लें, कहीं पे भी देखें, जहाँ पे अल्लाह का कोई बात हो, अल्लाह का जिक्र हो या दीन के साथ जुड़ना हो, वहाँ पे आप देखेंगे जो बहुत हाई क्लास लोग होते हैं ना, उनके जहन में ये होता है हमें क्या ज़रूरत है, हमें कौन सी ऐसी वो मुश्किल है। ये जिस जिसका अगली आयत में जिक्र आ रहा है, वो कालू नहनु अक्सर अमवाल व औलादा, हमारे पास तो इतना माल है, औलाद है, हमें क्या ज़रूरत है भाई दीन की तरफ आने की, हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वो तो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, वो कहते हैं ममा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, हम नहीं हम अज़ाब दिए जाने वाले, हमें नहीं कुछ होगा, हमसे तो अल्लाह खुश ही है। ये तुम लोग जाओ भाई, तुम्हारे कोई मसले मसाइल हैं, कोई गरीब गुरबा है, इनको तो ज़रूरत है। आप देखेंगे मस्जिदों में भी आने वालों की तादाद उनकी होगी जिसका कोई मसला होगा, जो बेचारा कोई बीमार है, जो बेचारा किसी तरह फाइनेंशियली उसको कोई मसला है, या कोई और घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, कोई और उसकी ऐसी परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, तो वो जाएगा। जो खुशहाल लोग हैं, मालदार लोग हैं, कौम के बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो कम ही इस तरफ आते हैं। खुशहाल लोग कम माना करते हैं, ये पूरी हिस्ट्री का ये बताती है हमें। इसका मतलब है कि सोसाइटी के जो बड़े लोग होते हैं, हक की बात अगर आप उनसे देख के सीखना चाहते हैं कि ये करेंगे तो हम मानेंगे, तो उनके तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप। ट्रैक रिकॉर्ड बताया मुतरफीन का, हम अपने दीन को मुतरफीन को देख के फॉलो करना चाहते हैं ना, भी वो क्या कर रहे हैं और वो फलाना क्या कर रहा है और उसके मुताबिक हमने चलना है। तो याद रखो ये मुतरफीन जो हैं, ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब रहा है। ये लोग तो कभी भी जब रसूल आए, इनका सबसे पहले इनकार करने वाले यही होते थे। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली देखना ना, किसी मुतरफ के पास ले जाएं, इस ज़माने के भी मुतरफ के पास ले जाएं, अब अल्लाह का पैगाम, उसके रसूल का पैगाम, नबी की दावत, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, फिर आपको जो जवाब मिलेगा आपको पता चल जाएगा पिछले ज़माने में किस तरह से अंबिया को झुटलाया जाता था। मुतरफीन वो ख़ास तबका है जिसको जब भी हक की दावत दी गई है, किसी ज़माने में भी इनकी तरफ से हमेशा एक ही रिस्पॉन्स आया, इना बिमा उर्सिल तुम भी ही काफिर हो, हम नहीं मानते, हमने नहीं मानना। क्योंकि वो एक तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, वो क्या मानेंगे। और मसला ये है जो हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि आम आवाम के जहनों का जो रिमोट कंट्रोल होता है इनके हाथ में होता है। आम आवाम दे देती है ना अपना रिमोट कंट्रोल अपने दिमाग का, कि ये जो बटन दबाएं सब के लिए वही चैनल ओपन हो जाते हैं। अफसोस है हमने अपने रिमोट कंट्रोल इनको दिए हैं, जैसा वो सोचें जैसा वो चाहें वैसे ही हम अपनी जिंदगी गुजारें। तो ये लेकिन याद रखिएगा कि मुतरफीन ने कभी भी हक को लबैक नहीं कहा शुरू में, बल्कि वो हमेशा अपने माल और औलाद के जूम में रहे। अब ये बात नहीं है कि गरीब लोगों को तो दावत नहीं दी जाती थी, पता नहीं अमीरों को ही कहा जाता था, सबको दावत दी जाती थी, सबको बुलाया जाता था हक की तरफ, मगर ये लोग नहीं आते थे। मगर मसला यह है कि सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, लोग इनकी ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, इसलिए अगर इनमें चेंज आ जाए ना, तो सोसाइटी के समझ लें जो अगर पिलर्स पिलर्स अगर बदल जाए तो बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। हम आप में से भी बहुत से यहाँ पे मुत्रफीन बैठे हो सकते हैं, खुशहाल लोग ना, मालदार लोग, रईस लोग। अगर आप लोगों में चेंज आती है तो फिर देखें सोसाइटी में खुद ब खुद चेंज आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों की तरफ खतूत भेजे थे ना, ये नहीं कि उनके कौमों की तरफ खत भेज रहे हो हर हर इंडिविजुअल को, इसलिए कि लोग अपने बादशाहों को फॉलो करते हैं। ये चेंज हो गए तो सारी कौम खुद बहुत चेंज हो जाएगी, फिर मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उससे भी पीछे चले जाएं, जिस दिन हज़रत उमर इस्लाम लाए थे उस दिन लोगों ने हरम में नमाज पढ़ी थी बेफिक्र होके, लोगों को परवाह नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि आज इस्लाम का एक मजबूत सतून, इस्लाम के साथ एक सोसाइटी का एक मजबूत सतून। तो ये वो थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, एक इनके लिए, एक अबू जहल के लिए, कि या अल्लाह इनमें से किसी एक को मुसलमान कर दे, क्योंकि ये पावरफुल लोग थे ना, तो अल्लाह ताला ने इनके नसीब में ईमान रखा था। तो इनके लिए क्यों दुआ की थी? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इनके इस्लाम लाने से इस्लाम को कितना फ़ायदा होगा। तो इसलिए इन लोगों का अगर इस तरफ ये लोग आ जाएं तो बहुत दीन को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपनी एक ख़ास मेंटालिटी की वजह से बहुत जल्दी इनकार कर देते हैं। और अगर आप पेरिश्ड नेशंस की हिस्ट्री पढ़ें, जो भी तबाहशुदा कौमें हैं, तो पता चलता है कि उनके भी जो मुत्रफीन थे, जो ट्रेंड सेटर्स थे, उनके पीछे लोग लगे और तबाह हो गए, उनको कॉपी करते रहे। आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन मुत्रफीन तक दावत पहुंचाने की तौफीक दे, अल्लाह उन्हें इस्लाम की तरफ मायल कर दे, उनको दीन के कामों में हमारा मुआविन बना दे। ये लोग अगर आ जाते हैं तो बहुत जल्दी माशरे में चेंज आ सकता है। आप खुद सोच लें, किसी वजीर की, किसी के फलां के, एक काम वो करता है कितनी जल्दी उसकी शोहरत मचती है और कितनी जल्दी लोग फॉलो करते हैं, जी फलां ने भी तो ये किया है। कोई बड़ा एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई सिंगर, कोई ये लोग दीन की तरफ आते हैं तो कितनी बड़ी चेंज आ जाती है, उनके सारे फैंस खुद ब खुद इधर आ जाते हैं। या और खुशहाल लोग जो एलीट क्लास होती है, एलीट क्लास को देख के लोग अपनी शादियां करते हैं, उनको देख के लोग कपड़े पहनते हैं, उनको देख के लोग लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो लोग इस तरफ आए तो बताएं कितनी चेंज आ सकती है। लेकिन उन लोगों को धोखे में रखती है क्या चीज़? माल और औलाद। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की वीकनेस भी हैं और इनके पीछे मुत्रफीन भाग रहे होते हैं, इस वजह से वो इनकार करने वाले होते हैं। आप देख लेना कि दिल इंसान के सीने में, दिल में दो चीज़ें नहीं आ सकती। जिस दिल में कुफर है उसमें ईमान नहीं आ सकता, और दिल एक ही है हर धड़ में, हर सीने में एक दिल है ना, और एक दिल में दो चीज़ें नहीं आ सकती, एक धड़ में दो दिल भी नहीं हो सकते। तो जिनका ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया की आसाइशें हासिल करना, दुनिया की मोहब्बत इतनी कूट कूट के भरी हुई है, तो इस दिल में हुब्बे इलाही कैसे आ सकती है? हुब्बे दुनिया जहाँ पे इतना ज़्यादा है, हुब्बे इलाही कैसे आएगी? एक निकलेगी तो दूसरे की जगह बनेगी ना, पहली निकलेगी नहीं तो दूसरा दूसरी चीज़ आ नहीं सकती। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ख्वाहिशात की मोहब्बत को कम करना। इन मुत्रफीन में बहुत ज़्यादा दुनिया की मोहब्बत थी, तो अब ईमान कहाँ से आता, हुब्बे इलाही कहाँ से आती? तो ये दुनिया की मोहब्बत अब दिल से ख़त्म कैसे हो? ख़त्म तो बहुत ही मुश्किल है, मगर कम कैसे हो? इसके लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया कि जो हमारे लिए भी कारामद हो सकता है। जिन जिन के दिलों में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है और उसको नहीं छोड़ पाते, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी इस दिल के अंदर जब तक दुनिया की मोहब्बत भरी हुई, ये ऑपोजिट दो चीज़ें हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा बताया कि मौत के हालात बहुत ज़्यादा वो उसके सामने ज़िक्र किए जाएं, मौत के हालात बहुत ज़्यादा पढ़ने चाहिए, आखरत के हालात पढ़ने चाहिए। इन आयात को जिनमें आखरत का जिक्र है इनको बार बार सुने, इतना सुने कि आपका दिल बोलने लगे कि वाकई मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, वाकई क़यामत का दिन आना है। ये बात दिल में बस जाए कि दुनिया कुछ नहीं है, इसका नफ़ा नुकसान कुछ नहीं है, ये है नफ़ा नुकसान, असल नफ़ा नुकसान। देखिए हर चीज़ का इलाज उसकी ज़िद से होता है ना, दुनिया की मोहब्बत का इलाज किससे है? आखरत की याद से। तो इसको आखरत याद करवाएं तो इसमें से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, तो मुतरफीन की बीमारी भी दूर हो सकती है। जब माल माल के पीछे भाग रहे हैं तो माल का अंजाम देखें ना कि दौलत से इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अल्लाह ताला ने दो आयतों में कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका बता दिया, इसका अंजाम क्या है। कसरत की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, ये और मिल जाए तुम कब्रों में पहुँच जाओगे, ये और नहीं ख़त्म होना। जिस माल के पीछे तुम असल मकसद भूल गए हो, ये माल तो यहीं रह जाएगा, तुम कब्र में पहुँच जाओगे। तो अब देख लें कि इस मोहब्बत को कम करना है, मुतरफीन जब इस मोहब्बत को कम करेंगे तो फिर ही मानेंगे, क्योंकि जो मानने के रास्ते में हायल है वो ये दुनिया है, इसका माल और औलाद। आप देखें एक और बात है, जब हरकल के दरबार में उसने अबू सुफियान को बुलाया था ना, तो उसने भी यही पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या इनकी ताबेदारी अमीर लोगों ने की है या गरीब लोग हैं इनके फॉलोअर। तो अबू सुफियान ने कहा था सारे गरीब गरीब लोग ही हैं, कोई अमीर नहीं, यानी इसमें भी बड़ा फ़ख्र था कि अमीर लोग क्यों फॉलो करेंगे। तो याद रखिए जितना जिसके पास माल होता है ना वो इल्ला माशाल्लाह, सारे ऐसे नहीं, मगर वो उतना ही ज़्यादा जो दौलत का नशा है ना वो उसके ऊपर ऐसा चढ़ा होता है कि फिर वो किसी की बात को, नबियों की बात को, हक की बात को कबूल करने ही नहीं देता। दूसरे नशे, शराब का नशा तो कभी उतर भी जाता है थोड़ी देर चढ़ने के बाद, दौलत का नशा तो उतरता ही नहीं है। जब तक इंसान के पास दौलत रहती है ना, इंसान उसके नशे में मुबतला रहता है, उसमें इतनी फूक भर जाती है, उसकी नज़रें ही बदल जाती हैं, वो मदहोश रहता है, उसमें से इतराना नहीं बंद करता, हर एक उसको अपने से हकीर लगता है। तो माल की वजह से ये समझते हैं हम बेहतर हैं, तो फिर क्यों मानेंगे? फिर मानने के रास्ते में ये हायल हो गया। और दूसरी चीज़ जो हायल हुई वो है औलाद, औलाद की कसरत। उस ज़माने में तो औलाद ज़्यादा होती थी ना, तो इस चीज़ को बहुत फ़ख्र का बायस समझा जाता था, क्योंकि वो कहते थे बल्कि जिसके बेटे ज़्यादा होते थे वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था कि मेरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आज के वक्त में चलो कसरत नंबर में ना सही, मगर कसरत सिर्फ नंबर की नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुराद हैं। क्वांटिटी में अगर नंबर में ज़्यादा नहीं भी हैं बच्चे, लेकिन क्वालिटी यानी मेरी औलाद इतनी ब्रिलियंट, मेरी औलाद तो फलां, मेरी इतने शार्प है मेरे तो बच्चे, और फलां मेरा बच्चा इतनी ऊँची पोस्ट पर पहुँच गया, और फलां मेरे बच्चे ने ये डिग्री कर ली, और फलां मेरा बच्चा ऐसे, ये चीज़ें इंसान को इस धोखे में डाल देती हैं कि इतना कुछ यहाँ पे मिला हुआ है हमें, दीन का ये भाई पढ़ने पढ़ाने की बातें, ये दीन की बातें ये हमें क्या बताते हो, हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोचते हैं पता नहीं ये जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं इनको कोई मसले तकलीफ़ें ही होंगी, जो बेचारे इतने भागे दौड़े फिर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या, जब हमारे पास सारा कुछ है तो हमें क्या ज़रूरत है। वो इसी को स्टेटस सिंबल बना लेते हैं ना, हमारा स्टेटस इतना ऊँचा, माल और औलाद जब हमारे पास है, अब हमारे से अल्लाह राज़ी है जो हमें यहाँ पे दे रहा है ना, कितनी बड़ी गलत फहमी। अब जब यहाँ पे अल्लाह हमसे राज़ी है तो वहाँ पे कैसे नाराज़ होगा, वह माना हनु भी मुआज़बीन, फिर इसका नतीजा ये है कि हम अज़ाब थोड़ी दिए जाएंगे। जो अल्लाह यहाँ पे राज़ी है उसने राज़ी होके देखो हमें यहाँ पे इतना कुछ दिया, वहाँ पे ना देगा। समझ आई बात, कैसा शैतान इंसान को धोखा देता है। हालांकि एक बात बहुत समझने की है और इसको नोट कर लें कि ये जो दुनिया है ये दारुल जज़ा नहीं है, जज़ा की जगह नहीं है ये, यानी इंसान के को इनाम की जगह नहीं है कि इंसान को इनाम मिल रहा है। इनाम तो किसी चीज़ पे मिलता है ना, कोई कारनामा करोगे तो उस पे मिलता है, ये इनाम की जगह नहीं कि इनाम मिल रहे हैं यहाँ पे। हमने कौन से कारनामे किए जिस पे इनाम मिलेंगे, इनाम की जगह आखरत है। वहां पे जाके जिसको जो कुछ मिलेगा वो इनाम है। ये तो क्या है, ये इनाम नहीं है, टेस्ट है। हम गलती ही तब करते हैं जब इसको इनाम समझ लेते हैं। जब हम इनाम समझते हैं ना कि ये मुझे इतना कुछ मिला, आखिर अल्लाह मेरे से राजी है, राजी है तो मुझे ये इनाम दिया, ये मेरा रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड की तो जगह ही नहीं, दुनिया तो अमल की जगह है, आखरत है जजा और सजा की जगह। तो धोखा ना खाएं, ये बड़ा सख्त धोखा है जो शैतान देता है। ये आज मिला है तो कल भी मिलेगा, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ये कैसे हो सकता है, वो जो हमारी गरीब मुफलिस हमारी काम वाली है, और ये कैसे हो सकता है वो जन्नत में भागी चली जाए और मैं पीछे रह जाऊं। हमें यहाँ पे इतने मुझे ऐश है, मैंने कभी आज तक एक तिनका दौरा नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है वहां पे जाके मुझे कुछ सजाएं मिलेंगी। ये कैसी बातें, तो ये बड़े धोखे हैं, ये बड़े धोखे हैं जो हमें माल की वजह से, और अगर औलाद अच्छी निकल आती है उसकी वजह से इंसान सोचता है बस सारा कुछ अच्छा ही अच्छा है यहाँ पे, तो वहां पे भी अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे स्टैंडर्ड बनाए हुए ना, हालांकि इंसान सोचे तो माल तो कब्र तक भी साथ नहीं जाता, औलाद तो कब्र तक भी साथ नहीं जाती, वहां पे क्या बचाएंगे ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इन धोखों से हमें बचाए। तो ये लोग कहते हैं हमारे पास ये सब कुछ है, अब यहाँ पे इसकी कसरत, इसका मतलब है कि हम में कोई बड़ाई है, इसका मतलब हम कोई चीज़ है, इसका मतलब है कि हम वाकई आला हैं सबसे। इसीलिए फिर वो अंबिया का मुकाबला करते थे ना कि हम तो ज़्यादा है माल औलाद में, आपके पास क्या है, क्या चीज़ है, आपके पास ना माल है ना आपके पास कोई औलाद, बेटा तो आपका एक भी जिंदा नहीं बचा, तो आप हमसे कैसे बेहतर हो गए, हमें ये इतना कुछ मिला हुआ है भला अल्लाह वहां पे ना देगा। तो आखरत को दुनिया की तरह नहीं ना समझ सकते हम। आप यहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने बता दिया, इसको क्लियर कर दिया कि कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिरु वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून। लोगों की अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, ये तो अल्लाह है जिसका चाहे रिस्क कुशादा कर दे, जिसका चाहे तंग कर दे। ये थोड़ी है कि तुम अल्लाह के बहुत चहीते हो तो तुम्हें ज्यादा दे दिया, कोई फेवरेटिज्म थोड़ी है कि अल्लाह ने, तुम अल्लाह के फेवरेट हो तो अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दे दिया, और वो अल्लाह को बहुत बुरे लगते हैं तो उनको कम दिया हुआ। ये अल्लाह ताला की हिकमत है इसमें, अल्लाह की ये एक देखें अल्लाह की मशीयत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है जिसको ज्यादा मिला हुआ है, और ये मतलब नहीं है कि जिसको तंग किया हुआ रिस्क अल्लाह ताला ने उससे अल्लाह नाराज है। ये तो रब के फैसले हैं, और उसके फैसले हिकमतों पे मबनी होते हैं, चाहे हमें हिकमत समझ आए ना आए। तो रिस्क किसके हाथ में है, किस बुनियाद पे किसको रिस्क दिया जाता है, ये अल्लाह ताला का टोटली फैसला है। ये किसी की बर्तरी की अलामत नहीं है, सुपीरियॉरिटी की अलामत नहीं है, इसलिए इसको जहन से निकाल दें। हम सोचते हैं अच्छा किसी का नुकसान हो गया, पता नहीं इतने फाकों पे आए हुए हैं, पता नहीं है इतने अरसे से इसके हस्बैंड के पास जॉब नहीं, पता नहीं इनसे क्या हो गया होगा, कुछ मसला ही हुआ होगा, जो इस तरह कोई इनसे गुनाह हो ही गया होगा, ऐसे तो नहीं होता ना। फिर ये बात नहीं है, जिसका चाहे वो अल्लाह के हाथ में है। वो तो कभी अपने दुश्मनों को भी बहुत दे देता है, फिरौन को नहीं दिया हुआ था, नमरूद को नहीं दिया हुआ था, इतना दिया कि वो कह रहे हैं कि हम तो रब ही बन गए। तो वो और उसे भी रिस्क दे देता है जिसको पसंद करता है, ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको पसंद करता उसे रिस्क ले ही ले, नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम देखे, दाऊद अलैहिस्सलाम देखे, वो जिसको चाहता है गनी कर देता है, जिसको चाहता है फकीर कर देता है। ये अल्लाह के करीब होने की निशानी नहीं, ये उसके फेवरेट होने की निशानी नहीं। इस आयत के बाद आपके उस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया, जो लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, पता नहीं 100 दफ़ा पूछ लिया होगा लोगों ने मेरे से कि अल्लाह ताला ने फलां अफ्रीका में इतनी बारिश नहीं होती, अल्लाह ने उनको ऐसे क्यों रखा हुआ है, और फलां जो है वो तो काफिर हैं, अल्लाह ने उनको क्यों इतना दिया हुआ है, और फलां जगह पे मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर क्यों इतनी रिस्क की तंगी है। तो याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक अगर दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को कुछ ना देता, इतनी सी भी वैल्यू नहीं है अल्लाह के नज़दीक। मच्छर के मच्छर देखें, जरा देखिएगा आप मच्छर मच्छर देखें और उसका पर देखें, नजर भी नहीं आता, मच्छर ही ना नजर आता तो पर क्या नजर आएगा। इतनी सी भी हैसियत नहीं है, इतनी सी भी वैल्यू नहीं है अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की, इसलिए अल्लाह ताला दे देता है जिसको जितना मर्जी दे देता है, किसी को माल में नहला देता है और किसी को लुकमे लुकमे का मोहताज कर देता है। ये नहीं है कि जिसको मोहताज किया हुआ अल्लाह दे नहीं सकता, उसके खजानों में कोई कमी हो जानी, नौजुबिल्ला के इसको नहीं दे रहा। हाँ, और ये नहीं है कि उसको मालदार कर दे तो अल्लाह को कोई बड़ा पसंद है वो, तो इसलिए मालदार किया हुआ। बल्कि एक तफसीर सालबी में आता है कि जान लो जरूरत के मुताबिक माल तो ठीक है, मगर जायद जरूरत माल तो आफत है, जिसे अल्लाह बचाना चाहे बचा ले। वरना अक्सर लोग सरकश हो जाते हैं, जब ज्यादा जरूरत माल मिल जाता है ना, जितनी आपकी जरूरत है उससे भी बढ़ के आपको मिल जाता है, तो फिर वो इंसान के लिए अक्सर आफत ही बन जाता है, क्योंकि इंसान आपे से बाहर हो जाता है। तो जिसको जरूरत के मुताबिक माल मिले और कनात मिल जाए ना, तो ये बड़ी नेमत है। कनात, कंटेंटमेंट, इंसान उस पर जो उसको मिला वह कंटेंटेड हो। तो रिस्क तो किसी को भी मिल सकता है, इसलिए इस चीज़ को जेनों से निकाल दें प्लीज़, कि जो है ना, इनको क्यों मिला और उनको क्यों नहीं मिला और उनको क्यों मिला। एक बड़ी प्यारा एक जगह मैंने पढ़ा, कौसर नियाजी ने कहा था, तूने हक को छोड़ा है इस एहसास-ए-गुरबत से फ़कत, तूने हक को छोड़ा है एहसास-ए-गुरबत से फ़कत, सोचता हूँ तो दिल एहसास से दहल जाता है, क्या इस बात से भी ना थी तुझको आगही, रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है। ये तो तूने हक को छोड़ा इसलिए कि गरीब हो जाओगे, फिर खाएंगे कहाँ से, ये कारोबार ना किया, ये ऐसा ना किया, तो फिर का गुजारा कहाँ से चलेगा। इतनी सी भी नहीं बात तुझे पता कि रिस्क तो इस दौर में कुत्तों को भी मिल जाता है, रिस्क तो अल्लाह उनको भी दे देता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस गलतफहमी से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन अक्सर लोग जानते ही नहीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि माल का ज़्यादा या कम होना, पता नहीं अल्लाह ताला किसी को फेवर कर रहे हैं या कोई ज़्यादा अच्छा लगता है अल्लाह ताला को, यहाँ पता नहीं क्या बात है। अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तक़र्रिबुकुम तुक़र्रिबुकुम इंदना, ये जो माल और औलाद है ना, ये नहीं तुम्हें हमारे करीब करेंगी, जुल्फा, दर्जे में, मर्तबे में। कि ये नहीं कि तुम्हारे पास माल औलाद है तो भाई तुम अल्लाह के बड़े करीब हो गए बहुत। आप देखें ना, आज मुहावरे भी कई बने हुए हैं कि जिन जिन जो अमीर होते हैं उनके सब चीज़ ही सीधी है भाई, वो उल्टा भी बोलते हैं तो सीधा है, सब उनके आगे यस सर करते हैं। तो ये ना समझो कि ये पता नहीं अल्लाह के पास कितने पहुँचे में है, कितना इनका मर्तबा है, या तुम अपने आप को समझ लो कि मेरे पास माल औलाद है तो बस फिर अब और क्या, तो मैं बहुत दर्जे वाली हूँ, या वहाँ पे मुझे बहुत ऊंचे दर्जे मिल जाएंगे। ये गलतफहमी दूर कर दो, ये तुम्हें दर्जों में ऊंचा नहीं करेंगे, तुम्हारे दर्जे अल्लाह के हाँ ऊपर नहीं कर देंगे। माल तो सोचे ना, खुद ही कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह ताला ने खुद आपको दिया है, किसी को भी अल्लाह देता है ना माल, तो क्या वो माल से मुतासिर हो जाएगा कि वाह इसके पास कितना माल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तो तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को और अमलों को देखता है, जिसके आगे जिक्र है, इल्ला मन आमना व आमिला सालिहन, क्या चीज़ तुम्हारे दर्जे ऊपर करेगी अल्लाह के हाँ, अल्लाह से करीब कौन सी चीज़ आपको करेगी, आपका ईमान और आपके अच्छे अमल। आपके माल नहीं कर देंगे कि आप माल अल्लाह को दिखा दिखा के उसको जैसे दुनिया में लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, और सोचते हैं कि यहाँ पे माल है और मेरी औलाद बहुत बड़े ओहदों के ऊपर है, तो जैसे यहाँ पे सारे काम निकल जाते हैं हमारे और हम कुछ भी चाहें तो करवा लें। और ये मुहावरे भी बने हुए हैं, जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी करवा ले, इस तरह की चीज़ों के बात है। तो याद रखो, अल्लाह को तो तुम इम्प्रेस नहीं कर सकते इन चीज़ों से कि वहाँ पे खरीद लोगे जन्नत जाके तुम, वहाँ पे तुम सोचते हो कि इस माल और औलाद मेरी मेरे पास है तो बस, फिर क्या मसला है, फिर तो वहाँ पे सारे काम हमारे इसी तरह बनते चले जाएंगे जैसे दुनिया में बन रहे हैं। तो यहाँ पे जुल्फा का मतलब ये है कि ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील नहीं है, ये अल्लाह ने इसको बड़ा काबिले तवज्जो समझा, काबिले मोहब्बत समझा, कुर्ब के काबिल समझा, तो इनको माल औलाद दे दिया। माल किसी को अल्लाह के करीब नहीं करता, औलाद किसी को अल्लाह के करीब नहीं करती, मगर ईमान अल्लाह के करीब करता है, साले अमल अल्लाह के करीब करता है। और इनके साथ फिर अगर ईमान और अमले साले अगर आपके पास हैं, तो ये इनके होते हुए आपके पास अगर माल और औलाद होगा तो क्या होता है उसका फ़ायदा, कि फिर इंसान उस माल को भी अल्लाह के रास्ते में लगाता है, उस औलाद को भी इंसान ऐसी तरबियत करता है कि फिर उसकी वजह से फिर ये उसके लिए सदका जारिया बन जाती हैं, फिर उसके दर्जे बुलंद हो सकते हैं। इसलिए इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि ये माल और औलाद अल्लाह से करीब नहीं करती, मगर जो ईमान और अमले साले रखता है उसके माल और औलाद अल्लाह से उसको करीब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा माना समझ लिया आपने कि जो ईमान और साले अमल वाला है उसके माल और औलाद उसको अल्लाह से करीब कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते किसी को भी उसका माल और औलाद अल्लाह से करीब। अल्लाह को रिश्वतें थोड़ी दे सकते हैं जैसे दुनिया में देते हैं, अल्लाह से कोई सिफारिशें थोड़ी करा सकते हो कि यहाँ पे औलाद ऊंचे दर ओहदों पे है तो वहां पे भी पता नहीं औलाद नहीं कह ला के तो हमें कहीं पार करवा देना। इसीलिए ताऊस कहते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल ईमान वल अमल, ए अल्लाह मुझे ईमान का रिस्क दे और अमल का। कितनी प्यारी दुआ है, ईमान और अमल मांगा करें और मुझे औलाद और माल के फितने से बचा ले। तो जब ईमान और साले अमल होगा ना, फिर आपकी औलाद भी अल्लाह के रास्ते में लगेगी, माल भी अल्लाह के रास्ते में लगेगा, फिर जाहिर है इनके जरिए से। लेकिन फिर भी अपना ईमान और अमले साले होना चाहिए, ये नहीं है कि फिर भी उन पे बैंक किया हुआ कि जो है ना हम तो मर जाएंगे तो हमारी साले ये जो हमारी औलाद है यही हमारे पीछे से कुछ भेजती रहेगी पढ़ पढ़ के हमें। खुद अपने लिए तो अपनी आखिरत के लिए खुद के पास तो टाइम है नहीं, और औलाद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने दौर में हम मर जाएंगे तो उनके पास टाइम होगा ज़रूर आपके लिए। जो अपने लिए खुद ना कुछ करके जाएगा उसको क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने काफ़रों के लिए कहा था सूरह तौबा में कि इनके माल और औलादें तुम्हें अच्छी ना लगे हैं नबी, यकीनन अल्लाह तो यही इरादा रखता है कि इनकी वजह से उनको ज़िंदगी में भी अजाब दे और इनकी जानें इस हाल में निकलें कि ये कुफर करने वाले हैं, ये तुम्हें अच्छे मरबूब ना करें, तुम इनसे ना इम्प्रेस हो जाना। हम देखते हैं ना जब इनके माल और इनकी आसाइशें और ये, तो फिर हम बड़े इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा इनके पास इतना है, पता नहीं अल्लाह ने इनको क्यों इतना दिया हुआ है और हमारे पास क्या है, और मुसलमान तो देखो ऐसे पिस ही रहे। तो ये तो फितना है, ये तो टेस्ट है, इसके जरिए तो अल्लाह ने टेस्ट करना है कि कौन अमल अच्छे करता है कौन नाफरमानी करता है। और काफरों के लिए तो है ही उनके लिए कि उनके लिए अजाब का बायस बने, ये अल्लाह से करीब थोड़ी करते हैं, ये तो टेस्ट है। जब इंसान इनकी मोहब्बत में हद से बढ़ जाता है तो जाहिर है अल्लाह ताला से दूरी हो जाती है। इसीलिए हदीस में भी आता है किसी चीज़ की मोहब्बत तुझे अंधा बहरा बना देती है। तो अब आप देख लें कि जब इनकी मोहब्बत टू मच हो जाती है ना माल औलाद की, तो फिर इंसान वाकई अंधा बहरा हो जाता है। फिर इनका जो कोई उल्टा काम भी होता है ना वो सीधा लगने लगता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत में इतने अंधे बहरे हुए होते हैं। तो ये जो माल और औलाद हैं ये हमसे याद रखें आखरत के अजाबों को नहीं हटा सकते, ना ही किसी को जन्नत का उम्मीदवार बना सकते हैं। इस बुनियाद पे इस बेस पे जन्नत नहीं मिल सकती, ना कोई एक्सपेक्ट करे। यहाँ पे ये अपना मिसकंसेप्शन सब दुरुस्त कर लें, इसको सही कर लें। अगर तुम्हें दुनिया में तुम्हारे माल की वजह से या औलाद की वजह से लोग पूछते हैं, बड़ाइयाँ मिलती हैं, हर जगह जाते हो वहाँ पे आपके सामने रेड कारपेट बिछ जाते हैं, तो चलो ठीक है दुनिया में मिल सकता होगा, आखरत में एक्सपेक्ट ना करना जब तक ईमान और अमले साले ना हो। तो अल्लाह से करीब होने की यहाँ पे सीढ़ी पता चली, ईमान और साले अमल। फ़ाउलाइका लहुम जज़ाउ दिअफी बिमा अमिलू, जो ईमान और साले अमल लेकर आया तो यही लोग हैं इनके लिए जज़ा है दुगनी। दुगनी किस वजह से? ईमान और साले अमल के बाद अगर आपको माल और औलाद भी मिलता है आप उसको भी लगाते हैं तो आपने खुद भी अमल किया और ये आपके लिए सदका जारिया भी बन गए। सदका जारिया आपने अपने पीछे छोड़ा जिसका अजर भी आपको मिलता रहेगा। तो दुगना से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो गुना, जैसे मैंने बताया था आप देखते हैं फी सबीलिल्लाह जब आप कोई काम करते हैं उसका अजर 10 गुना तो मिलना है ही, उससे बढ़ के भी मिल सकता है, 700 गुना का भी जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के देंगे, डिपेंड करता है किसी की नीयत कैसी है, किसी का अखलास कैसा है, किसी की कोशिशें कैसी हैं। बिमा अमिलु बिवजह इसके कि जो उन्होंने अमल किया, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने दे दिया माल और अल्लाह ने ही औलाद भी दी है, इसमें आपका क्या कमाल है? ना मेरा ना आपका कोई कमाल नहीं कि हमारे हमें अल्लाह ताला ने औलाद दी या अल्लाह ताला ने हमें आसाइशें दी। अगर हम में से कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है, तो फिर आप खुद बताएं उसमें उसका क्या कमाल है। बात तो अजर तो इस पे मिलेगा जो उन्होंने अमल किया, इस पे नहीं जो अल्लाह ने दे दिया वह मुफ्त में। वहुम फिल गुरुफात यामिनून, वो गुरफों में होंगे, वो बाला खानों में होंगे, अमन से रहने वाले। गुरफे कौन से? ऊंची जगहों पे बनाए गए होंगे या ऊंची मंजिलें, वहां पे यानी समझ लें जैसे बुलंद इमारतें आज भी शानो शौकत की अलामत होती है ना, तो ये उनको मिलेंगे। और हदीस में कुछ और लोगों के भी ये भी आता है कि जिनको ये गुरफे मिलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में झरोके हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से नज़र आता है। एक बद्दू ने कहा ये किन के लिए हैं ये बाला खाने जो हैं, ये हाई राइजेज या ऊपर की मंजिलें, पेंट हाउस वगैरह हम कहते हैं, ये किन के लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिसने बड़ा मीठा कलाम किया, शीरी कलाम, मीठी बात, यानी ज़ुबान से मीठा ही बोलता है, ऐसे नहीं कि ज़ुबान खोली और तीर बरसने लगे, दूसरे को तकलीफ़ दे के ही उठे, नहीं, उसकी ज़ुबान से लोगों को तकलीफ़ नहीं होती। कितना प्यारा होगा ना वो इंसान जिसकी ज़ुबान से लोगों को हमेशा अच्छाई मिले। और खाना खिलाए, जो बहुत खाना खिलाए, जो पे दर पे रोज़े रखे, और जो रात को उस वक़्त नमाज़ें पढ़े जब लोग सोते हैं। अब इन क्वालिटीज़ को हम अपने अंदर पैदा करें तो ऐसे हमें क्रिस्टल कह सकती हूँ, या क्रिस्टल मामूली चीज़ है मगर आपको सिर्फ बताने के लिए, अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नज़र आता है, यानी अंदर से यहाँ पे बड़े बड़े होटलों की देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सीन्स खूबसूरत बाहर सीनरी होती है, तो वो पूरी विंडोज़ होती हैं जो ज़मीन से छत तक होती हैं, और पूरी वॉल की जगह पूरी विंडो है, शीशे ही शीशे हैं वहाँ, ताकि आप व्यू खूबसूरत देख सकें सामने। तो जन्नत का व्यू जहाँ से नज़र आएगा बाला खाने, और ऊंची जा जितनी ऊंची मंजिल होती है उतना ही व्यू दूर तक नज़र आता है। तो ये अमन में रहेंगे वहाँ पे, कोई ख़तरा नहीं है और कोई रंज गम भी नहीं है, और ये भी कोई खौफ नहीं है कि पता नहीं मुझसे छीन ही ना लिया जाए, वापस ना ले लिया जाए, बल्कि अमन के साथ वहाँ पे रहेंगे। तो ऐसी अखलाक अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें जो दो हकूकुल इबाद हैं और दो हकूकुल्लाह हैं, कि खाना खिलाना और ज़ुबान से शीरी कलाम करना, मीठा कलाम करना। खाना खिलाने में तो शायद आपका कोई पैसे स्पेंड हो, ज़ुबान से मीठा बोल बोलना इसके अंदर तो कुछ पैसे नहीं लगते, इसमें तो कोई एफर्ट नहीं है। या रोज़े रखने में चलो कोई एफर्ट है, तहज्जुद पढ़ने में कोई एफर्ट है, लेकिन कुछ तो अपने अंदर हम ये क्वालिटीज़ पैदा करें। अच्छा, ये जो जज़ा व ज़ियाफ़ी है ना, कई गुना, आप देख लें दुनिया में भी जैसे मर्तबे होते हैं, फजीलतें होती हैं, कोई कम है, कोई उससे बढ़ के, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, आखरत में भी तो दर्जे हैं ना। आखरत की फजीलतें दुनिया की फजीलतों से बहुत बड़ी हैं, वहाँ की ऊंच नीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उसमें। तो वहाँ पे भी जज़ा कई, किसी को दुगनी मिलेगी, किसी को तिगनी, किसी को 10 गुना, किसी को उससे भी ज़्यादा, उसके मुताबिक उसके रिवॉर्ड्स जो हैं और उसके मुताबिक जो उसको नेमतें मिलेंगी, तो इसका अंदाज़ा कीजिए फिर।